So we begin chapter 10 of Hebrews.
और इब्रानी 10 अध्याय को हम अभी देखेंगे.
And remember, I don't know whether you're listening or if you don't have any questions.
और आप याद कीजिए कि शायद मैं नहीं सुना होगा या आप मुझे कुछ सवाल नहीं पूछे तभी.
I don't remember whose turn it is, but.
और मुझे पता नहीं कि अभी Hindi? अभी किसका बारी है पढ़ने का. हो सकता है हिंदी वालों का.
Yes.
हिंदी वाले भाई अभी 10 को पढ़ेंगे एक से आखिरी तक. तो आधा जाके वहाँ पे बैठे हैं तो इधर भी देखना पड़ेगा उधर भी देखना पड़ेगा
क्योंकि व्यवस्था आने वाली अच्छी वस्तुओं का परिचय हो गया उनका असली स्वरूप नहीं इसलिए एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता इसलिए कि जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते हैं उनका विवेक पापी ना ठहराता परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है तो जो ये अनुमाना है कि बैलों और बकरों का लोग पापों को दूर करें इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है कि बलिदान और भेंट उन्हें ना चाहिए पर मेरे लिए एक देह तैयार किया होम बलि और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ तब मैंने कहा देख मैं आ गया हूँ पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है ताकि हे परमेश्वर मेरी इच्छा पूरी तेरी इच्छा पूरी करूँ ऊपर तो वह कहता है कि ना तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा और ना उनसे प्रसन्न हुआ यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं फिर यह भी कहता है कि देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूँ विधान वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करें उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देखे एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं और हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है पर यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा और उसी समय से इसकी बात जो रहा है कि उसके पैर ही उसके पाँव के नीचे की पीढ़ी बने क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है क्योंकि उसने पहले कहा था कि प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्थाओं को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके वेद में डालूंगा फिर वह यह कहता है कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के पापों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा सो है भाइयों जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का यह हो गया है जो उसने पर्दे अर्थात अपने तरीके से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक को दोष दूर करने के लिए हृदय पर चिंता लेकर और देह को शुद्ध करके कर परमेश्वर के समीप जाए और अपनी आशा के अधिकार को दृढ़ता से कामे रहे क्योंकि जिसने परमेश्वर किया है वह सच्चा है और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करे और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े जैसे कि पितरों की रीति है पर एक दूसरे को समझाते रहें और जो जो उस दिन को निकट आते देखो यो तो और भी अधिक किया करो क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए भी कोई बलिदान बाकी नहीं आदर का एक भयानक बाण जोड़ना और आग का ज्वलन बाकी है तो जो विरोधियों को भस्म कर देगा जबकि मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला दो या तीन जनों की गवाही पर बिना डर के मार डाला जाता है तो सोच लो कि वह और भी भारी करने के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को अमोह से रोंदा और वाचा के लोगों को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा कि पलटा लेना मेरा काम है यही बदला दूंगा और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है परंतु तुम पहले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े झमेले में स्थिर रहे कुछ जो यों की तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने और कुछ यों की तुम उनके साझे हुए जिसकी दुर्दशा की जाती थी क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम सबदार रहने वाली संपत्ति है सो अपना यह होना छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है क्योंकि तुम्हें निरस करना अवश्य है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जब भी आने वाला आएगा और देर ना करेगा और मेरा धनी जन विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए।
So the writer of Hebrews is reminding us in verse 1.
और इब्रानी के लेखक हमें एक आयत में हमें याद दिलाते हैं
that the law, all those things that were written concerning the covenant,
और जो व्यवस्था जो नियम बादशाह को जो दर्शाता था सारे चीजों में
are a shadow of those things that were to come,
और जो आने वाला है उसका एक छवि ही है
at the time they were all pointing forward to the cross,
और एक समय था कि ये सारा चीज जो मसीह के क्रूस की ओर दिखाता था
the difficulty is that the Jews thought they were the very image of things,
और परंतु समस्या का क्या था वो यहूदी लोग ये सारे चीजों से अनजान थे नहीं जानते थे
that they were the real not the image of the true,
और ये लोग ये एक छवि ही थे ये सच्चाई नहीं थे
and because of that it caused them problems,
और इसीलिए उनके मन में ये सारे सवाल आता था और समस्या उनके मन में आता था
and over and over he's taking away those problems,
और यहां पे बार-बार वो ये समस्याओं को दूर कर रहा है उनके मन से।
One of the problems they had was they had to go continually.
और एक समस्या क्या था कि उनको हर साल जाना पड़ रहा था अंदर।
And he says, but if the sacrifice at the altar could have made them perfect,
अगर वो वेदी के ऊपर जो बलिदान किया जाता था वो अगर उनको सिद्ध कर पाता,
then how, why would they have to go back again?
तो फिर क्यों उनको एक साल के बाद फिर जाना पड़ता था?
But we need to remember that the law had good things.
लेकिन हमको याद ये भी रखना है कि जो व्यवस्था में कुछ अच्छा चीज भी हमें दिया गया है।
We've mentioned it before that there is an already and a not yet.
और हमको हम लोग जानते हैं कि कुछ हो चुका है और कुछ अभी तक हुआ नहीं है बाकी है।
Jesus has already saved me.
और यीशु मसीह मुझे उद्धार दे चुका है।
But Jesus one day is going to save me.
परंतु ऐसा एक दिन भी है जो यीशु मसीह मुझे पूरी तरह उद्धार देगा।
He's justified me and he will glorify me.
और वो मुझे यहाँ पे धर्मी ठहराया परंतु आने वाले दिनों में मुझे महिमा देगा।
The law wasn't any different. It had an already and a not yet.
परंतु जो व्यवस्था था वो ऐसा नहीं कहता कि वो पूरा हो चुका है और कुछ बाकी है।
The law had justice.
और जो व्यवस्था और जो न्याय दिखाता था
it had peace, it had fellowship.
और यहाँ पे वो सहभागिता था शांति था
it had cleansing, it had joy.
और वो वहाँ पे आनंद था वो साफ करता शुद्ध करता था
But what they didn't realize is there was a not yet.
परंतु ये लोग यहूदी लोग ये नहीं समझे कि कुछ अभी भी बाकी है
the shadow was not the perfection.
और ये जो छाव है परछाई है ये सिद्धता या सच्चाई नहीं है
otherwise the blood of bulls and goats would have taken away sin.
नहीं तो जो बकरों और बछड़ों का लहू और खून उनको सिद्ध बना देता
but the writer has said it and he said it enough times that we now just know it as a fact.
लेकिन यहाँ का लेखक जो कहता है कि बहुत सारे समय है वो चीजों को देखने में हम देखे
that it's not possible for the blood of an animal to take away the sin of a man.
और हम लोग जाने कि कोई भी पशु का लहू और खून और इंसान के पापों को पूरा पूरी नहीं धो सकता
we also know that it's not possible for the blood of a man to take away the sin of a man.
और ये हम लोग देखे कि कोई इंसान का लहू भी खून भी किसी इंसान के लिए उनका पापों को नहीं ले सकता
so it had to be the God man.
इसीलिए एक व्यक्ति को जो इंसान और परमेश्वर दोनों होंगे ऐसा ही चाहिए था
You see, there's a problem when it comes to shadows.
और यहाँ पे एक समस्या आता है जब हम छवि के बारे में बात करते हैं
They were living in the shadow of the cross.
वो क्रूस की वो छवि में वो लोग रह रहे थे
They were looking forward, but the light was shining back towards them.
और वो आगे तो देख रहे थे परंतु वो छवि में ही थे
And as any shadow, that's broken too. There we go.
Yeah.
Although that's not very bright now.
Yeah.
When you Well, you can see his shadow on the wall.
Okay.
Right?
The light on?
Yeah.
आप यहाँ पे मेरा छवि देख पा रहे हैं?
But what happens when I move the light?
लेकिन क्या हो रहा है जब ये लाइट को इधर-उधर कर रहे हैं?
The shadow changes.
और ये छाव जो है ये बदल रहा है देखिए.
Every which way you shine the light.
और जहाँ जिस तरह जहाँ से जिस ओर से वो लाइट को दिखा रहे हैं.
The shadow is different.
और उसका छाव ये छाव अलग-अलग हो रहा है.
That's the issue that the Jews had.
और ये समस्या था यहूदियों के बीच में
One person says it's this way.
और कुछ लोग कहा, एक व्यक्ति कहा ये है वो रास्ता.
Another person says it's this way.
और एक व्यक्ति कहा ये रास्ता ही ये रास्ते में.
Because they were living in the shadow.
क्योंकि वो छाव में रहते थे.
They didn't have the true light.
और उनके पास वो सही ज्योति नहीं था.
But you see, that ought to be a warning for us.
लेकिन ये हमारे लिए सतर्क होने का विषय है.
We too are living in the shadow of the cross.
और हम भी वही क्रूस के छाव में रहते थे.
Jesus was crucified almost 2,000 years ago.
और यीशु मसीह 2000 करीबन 2000 साल पहले क्रूस पे चढ़ाए गए.
And we're living in the light of that crucifixion.
और हम वो क्रूसीकरण का वो ज्योति में हम लोग रह रहे हैं.
And we're living in the light of his resurrection.
उसके पुनरुत्थान की ज्योति के अंदर रह रहे हैं, उसके नीचे.
But the same way that light changes for those in the Old Testament depending upon the way the shadow is.
और जैसे पुराने नियम में जो लाइट दिखाया उसी तरह जैसे वो छाव बदल रहा था.
The same thing can happen to us.
हो सकता है हमारे साथ भी ये हो सकता है.
Jesus says false prophets have entered in.
यीशु ने कहा कि झूठे भविष्यवक्ता घुस गए हैं.
Paul warns us time and again.
और पौलुस इसके बारे में बहुत जगहों पे हमें कहा है.
You see, they have a shadow of the truth.
और वो कहा कि उनके पास वो सच्चाई का प्रतिबिंब है, छाव है.
But not the fullness thereof.
लेकिन वो उसके पीछे जाके मत बनो.
How do you tell the difference?
और आप कैसे जान पाओगे उनके और इनके बीच में अंतर?
It's by comparing it to this word.
आप वचन के द्वारा ही.
This is the truth.
ये ही सच्चाई है.
This is the light of Christ.
और ये ही मसीह का ज्योति है.
These are the words that he's spoken to us for our salvation.
और हमारे उद्धार के लिए ये वो अपने मुंह से जो कहने वाला बात यही है वो.
And so whenever anyone presents a picture of Christ.
और जब कोई भी मसीह का एक छवि को लाता है आपके सामने.
A picture of how you ought to live in Christ.
और एक छवि जो आपको कैसे रहना है मसीह में.
What you do is you compare it to this.
आपको क्या करना है, आपको वचन के साथ उसे तुलना करना है.
And if it agrees, wonderful.
अगर यहाँ पे वो लिखा जाता है आप सहमत हो तो ठीक है वो.
If it doesn't agree, what do you throw out?
अगर ये सहमत नहीं है तो आप क्या करेंगे उसे?
The book?
आप क्या करेंगे इसको देखेंगे और
or the prophet.
ना कि वो भविष्यवक्ता जो कह रहा है उसको देखेंगे.
You get rid of the prophet, not the book. You get rid of the prophet, not the book. You get rid of the prophet, not the book.
आपको इसको छोड़ना नहीं है, आपको वो भविष्यवक्ता को छोड़ देना है जो वचन के विरुद्ध में कह रहा है.
Because this is our standard for faith and practice.
क्योंकि ये हमारे विश्वास को अभ्यास करने के लिए ये ही हमें काफी है.
And we have to remember that.
और इसको हमें याद भी रखना है.
We have to live that way.
और उसी हिसाब से हमको जीना भी है.
We have to set that example for others.
और दूसरों के लिए एक उदाहरण के स्वरूप हमें जीना है.
And so you see the ball having a shadow of good things to come.
और यहाँ पे देखिए कि व्यवस्था जो एक छाव है जो अच्छा चीज को लाने वाला था.
And not the very image of those things.
लेकिन वो उसका प्रतिरूप नहीं था.
What did we learn in verse 3 of chapter 1?
और एक अध्याय उसका 3 आयत में हम लोग क्या पढ़े?
What is Jesus?
और यीशु मसीह कौन है? नो नो नो, 1:3 में याद करें. इब्रानी 1:3, इब्री 1:3 जे कौन हमें पढ़िला?
What is Jesus in chapter 1 verse 3?
1:3 में यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है? यीशु मसीह कौन है? इज अ क्या लिखा जाता है? एग्जैक्ट इमेज ऑफ गॉड.
He's the express image of God.
वो परमेश्वर के वो प्रतिमूर्ति है.
So even though we're living 2,000 years after the cross,
हो सकता है हम लोग 2,000 साल के बाद जी रहे हैं, जैसे क्रूसीफिकेशन के 2,000 साल के बाद जी रहे हैं.
We have the express image of Christ.
और हम हैं वो मसीह के छाप.
We have the express image of God here in this book.
हम परमेश्वर के छाप है इस पुस्तक के हिसाब से.
And we're told over and over again that he is actually conforming us to the same image using this book.
और वो हमें बार-बार ये बताना चाहता है कि हम उसी के तरह दिन-ब-दिन बदलते जा रहे हैं.
That's because it's one sacrifice.
ये उसके एक ही बलिदान के द्वारा ही हुआ.
You see, the day of atonement for the Jews,
आप देखते हैं यहूदियों के ये जो प्रायश्चित के दिन में
brought a remembrance of sin.
और एक पाप का एक यादगार का लिए एक बलिदान को लाते थे.
You were there to bring the sacrifice because of the sin you committed in the year before.
और एक साल पहले या कुछ दिन के बाद पहले आप जो पाप को किए थे उसी लिए एक एक दिन प्रायश्चित का दिन था. वो दिन में आपको क्या बलिदान लाना था पुराने नियम में.
But not so the sacrifice of Christ.
लेकिन यीशु मसीह का बलिदान के साथ ऐसा नहीं.
When someone is baptized, what are we doing?
और जब एक बपतिस्मा लेता है हम क्या करते हैं तभी?
We're remembering the cleansing from sin.
हम क्या करते हैं कि पाप से धुला गया है ये याद करते हैं उसे.
Because of the sacrifice of Christ.
क्योंकि मसीह के बलिदान के द्वारा ही.
When you take part of the Lord's table, what are you doing?
आज जब परमेश्वर की मेज के सामने आप आते हैं क्या करते हैं?
You are remembering the death of Christ who took away your sin.
आप याद करते हैं कि मसीह के मृत्यु के बारे में जो आपके लिए हुआ आपके पापों की क्षमा के लिए.
He hasn't just taken away your sin, he's taken away the guilt of your sin.
अब वो खाली आपके पाप को नहीं लिया परंतु पाप का जो दोष हमारे मन में था वो सारे चीज को ले लिया.
And so the Lord's table ought to be a time of joy and of celebration.
और इसीलिए हमारे लिए जो मेज होता है वो परमेश्वर के सामने आनंद का विषय है.
We rejoice because we now understand because of the law what Christ has done to fulfill the law.
और ये हम आनंद मनाते हैं व्यवस्था के कारण जो व्यवस्था कर नहीं पाए परंतु यीशु मसीह हमारे लिए किया इसलिए हम आनंद मनाते हैं.
And in his death and resurrection he's caused us to do the same.
और उसके मृत्यु के द्वारा और पुनरुत्थान के द्वारा हमें वो दिया कि हम वो आनंद मना सके.
So that as Paul says we're no longer living under the law, we're living under grace.
और इसलिए पौलुस कहता है कि हम व्यवस्था के नीचे और नहीं है परंतु अनुग्रह के नीचे हम लोग हैं.
Now there's an important thing we have to remember.
और एक चीज को हमें याद रखना है.
You see, some people will go around saying incorrect things.
और कुछ लोग ऐसे जाते हैं कुछ चीजों को ठीक ठाक करने.
Turn over to Romans chapter 6.
और रोमी की पत्री 6 अध्याय को हम लोग निकालेंगे.
At the end of Romans 5.
और 5 का आखिरी में.
Paul is talking about the justification that we receive by God through Christ.
और यीशु मसीह के जरिए जैसे हमें धर्मी ठहराया गया हम उसे ग्रहण किए उसी के बारे में कह रहे हैं पौलुस.
One of the most wonderful things we can do as Christians is hear the testimony of other Christians.
और मसीह होने के नाते एक अच्छा चीज हम क्या करते हैं? कोई भाई और बहन अगर नया नया प्रभु में आता है तो हम उसकी गवाही को सुनते हैं.
To hear what God has saved someone out of.
हम सुनते हैं कि ये यहाँ पे ऐसा किया उसके भाई के और बहन के जीवन में परमेश्वर के जीवन में काम किया बोल के.
And we rejoice with them because of the power of Christ in their life to remove them from that sin and to remove the sin from them.
और हम वहाँ पे आनंद मनाते हैं क्योंकि मसीह का सामर्थ भाई और बहन के जीवन में वो काम किया ताकि वो पाप से बाहर जा सके.
And you can think of Paul who calls himself the chief of sinners.
और यहाँ पे आप याद कर सकते हैं कि पौलुस अपने आप को कहता है कि मैं पापियों में प्रधान हूँ.
And how much grace it took for Christ to cleanse him.
और कितना अनुग्रह चाहिए था जो यीशु मसीह उनको उनका पापों को क्षमा दिए.
And Paul says in Romans 5 that the more that sin abounds, grace abounds.
और पौलुस कहता है 5 में कि पाप जितना बांध पाता है उससे अनुग्रह ज्यादा मुझे बांधा है.
Read verse 1 of chapter 6.
और 6 का 1 को हम लोग पढ़ेंगे रोमी 6 का 1.
If God's grace abounds when I sin in forgiving me,
अगर परमेश्वर प्लीज और एक बार प्लीज वन और सॉरी वन मोर टाइम.
If God's grace abounds when he forgives me.
परमेश्वर का अनुग्रह मुझे बांध पाता है बांधता है जब मैं जब वो क्षमा देता है.
Shouldn't I go sin more so God's grace will abound more?
तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं जाके और भी पाप करूं ताकि ज्यादा पाप क्षमा हो.
He says, God forbid.
ये कह रहा कि ऐसा नहीं होना है.
How should we that are now dead to sin?
वो कह रहा कि जब हम पाप के लिए मर गए हैं तो फिर जाके कैसे वैसे जीवन बिता सकते हैं?
He says in Galatians, he says it this way, I am crucified with Christ.
और वो गलतियों के पुस्तक में कहता है कि मैं यीशु के साथ क्रूस में चढ़ गया हूँ.
And yet, nevertheless, I live.
और मैं मुझ में मैं नहीं हूँ जीवित नहीं हूँ.
Christ lives in me.
मसीह मुझ में है.
And he says, I have been crucified to the world.
वो कह रहा कि मैं दुनिया के लिए मर गया हूँ.
And the world has been crucified to me.
और दुनिया मेरे लिए मर गया है.
What he's saying is, sin used to be alive in us.
और वो क्या कह रहा है कि जो पाप हमारे जीवन में वो रहता है हमेशा
and we were dead because of it.
और क्या वो था हमेशा और हमें हम वो पाप में हम मर गए थे
now we are alive in Christ.
परंतु अभी हम यीशु में जिंदा हैं
the only way to be alive in Christ
और एक ही रास्ता है मसीह में जिंदा होने के लिए
to be dead to sin.
क्योंकि आपको पाप में मरना होगा
you can't have both masters.
पाप के लिए मरना होगा आपके लिए और आप दो मास्टर को लेके आप सेवा नहीं कर सकते
And so we follow Christ.
इसीलिए हम यीशु को फॉलो किए
we walk after him.
हम उसके पीछे हो लिए
God forbid that sin should abound.
और पाप हमें बांधेगा ये परमेश्वर ना होने दे
How would it bring glory to your Savior who paid for sin for you to go around purposely sinning
dekhiye kaisa lagega jo aapke parmeshwar aapke prabhu ne aapko chhudaya papon se aur usko kaisa laga phir jaake aap jaise paap kar rahe hain
how would it appear to your savior that you go around carrying saying thinking sin doesn't matter
aur aapko aap aapke jo udhaarkarta ke samne khade hoke aapko usko kaisa lagega jab aap udhaar usse paakar phir jaake janbujhkar paap kar rahe hain
it certainly mattered to him when they put the nails in his hands
aur ye ho जैसे कि आप उसको और एक बार उसको हाथ पे आप कीले ठोक रहे हो
It ought to matter to us.
और लेकिन ये हमारे लिए जानना जरूरी है
Because of what it cost our Savior.
क्योंकि मुझे जानना है कि हमें जानना है कि सही में मेरे उद्धारकर्ता कितना मोल चुका है मेरे लिए
Someone please read verse 5 through verse 7 of Hebrews chapter 10.
इब्रानी 10 का 5 से लेके 7 तक कोई पढ़े
सेटिफाई क्रिस्ट जगतको आगमन करिबो हामी बलिदान अनुपेत नलोभि मन मन्दिर एक शरीर कष्ट कर हम बलि ओ बापा छोट बलि तुम्हें सन्तुष्ट हेल नाही सेतेबेले मु कहिलि देख शास्त्र मो विषय देखा अछि हे ईश्वर तुम इच्छा साधन करिबो मु आसे अछि जेपरि से कहन्ति बलिदान नैवेद्य
So, chapter 10
so, that's adhyay
is the climax of the writer of Hebrews' argument.
वो एक क्लाइमैक्स है जो पॉलुस जो सॉरी इब्रानियों के लेखक जो कह रहे हैं उसके बारे में
सुपीरियरिटी ऑफ द पर्सन एंड वर्क ऑफ जीसस क्राइस्ट
और मसीह का जो काम श्रेष्ठ काम है उसके बारे में
एवरीथिंग हैज बीन बिल्डिंग एंड हाउ इट्स टू द पिनकल
और ये सारे चीज जो किया गया है वो यानी वो श्रेष्ठता तक पहुंचने के लिए ही
एंड वाज इट डन टाइम एंड टाइम अगेन
और वो जैसे बार बार हमें चिताया गया
He appeals to the Hebrew scriptures.
और वो इसके पाठक को वो कहता रहा
It says in verse 5, Wherefore, when he comes into the world,
और यहाँ पे पांच आयत में जैसे लिखा जाता है इस कारण मसीह जगत में आते समय कहता है
We know exactly who he's talking about.
हम जानते हैं कि वो किसके बारे में और किससे कहता है
This is the son.
ये पुत्र के बारे में
Acts who's coming into the world.
और वो जो दुनिया में आने वाले हैं.
Here he is. He has spoken to us through his word.
और ये है वो जिन अपने वचन के द्वारा जिनसे बात किए.
He's here to sacrifice himself for us.
और वो अपने आप को बलिदान कर दिया हमारे लिए.
So this is Jesus speaking to the Father.
और यहाँ पे यीशु मसीह पिता को कह रहे हैं.
He says.
वो कह रहे हैं.
Sacrifice and offering. You didn't want
बलिदान और भेंट तूने ना चाही
but a body you prepared for me
पर मेरे लिए एक देह को तैयार की
and burnt offerings and sacrifices for sins you had no pleasure
और होम बलि और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ
So I said, I come to do Thy will, O God.
इसलिए ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं इसलिए मैं आ गया हूं.
And you can read about it in the volume of the book.
आप यानी और जगहों पे इसको देख सकते हैं.
You see, God didn't desire the sacrifices.
और यहाँ पे परमेश्वर वो डिजाइन नहीं किया बलिदान के लिए.
He wasn't eating of the meat. He wasn't eating the meat.
और वो मांस को नहीं खाया.
He wasn't over there smelling it and said, "Oh, that smells delicious."
लेकिन वो जो सुगंध आता था सुगंध के लेके वो अच्छा अच्छा लग रहा है.
What God wanted was the heart.
लेकिन परमेश्वर क्या चाहता था? परमेश्वर हृदय को चाहता था।
He wanted the faith of the people.
से वो लोगों का वो विश्वास को चाहता था।
And Jesus knows this.
और यीशु मसीह ये जानते थे।
Did Jesus never offer a sacrifice in his life?
और क्या यीशु मसीह अपने जीवन में जितना दिन यहाँ पर रहे कोई बलिदान चढ़ाया?
Anything at all?
और कुछ बलिदान चढ़ाया?
We know his parents offered the birds when he was born.
हम जानते हैं उसके पिता माता चढ़ाए थे, लेकिन वो कभी चढ़ाया?
But what sin did he commit that required a sacrifice?
परंतु कौन सा पाप वो किए वो इसके लिए उनको बलिदान करना पड़ा खुद को?
In fact, you can turn to Matthew chapter 17.
और आप मत्ती 7 अध्याय आप निकाल सकते हैं।
And read verses
17 को निकाल सकते हैं।
And read verses 24 to 27.
और 24 से लेकर 27 आप पढ़ सकते हैं।
एनु जे के मोहर ए समस्त कथा सुने और फलन पर ऐसे पासा न करे गुरु करे दीदी न मुष्टि हैला
17 पढ़ जो मत्ती 17
सही प्रकार समूहन
What's chapter 17, 24 to the end?
अपनो 17 मत्ती 17 पढ़ जाने तो मत्ती 7 पढ़ जाने तो हाँ जैसी मत्ती
जो सेवाने प्रथम जब एक अपन गांव में पहुँचे मंदिर के लिए कर लेने वालों ने पत्र से पास आकर पूछा कि क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता उसने कहा हाँ देता तो है जब वह घर में आया तो यीशु ने उसके पूछने से पहले उससे कहा हे समन तू क्या समझता है पृथ्वी के राजा महसूल यह कर ले कि उसे लेते हैं अपने पुत्रों से या परायों से पतरस ने उसे कहा परायों से यीशु ने उससे कहा तो पुत्र बच गए वो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाए तू झील के किनारे जाकर मछली डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले तो तुझे उसका मुंह खोलने पर एक सिक्का मिलेगा उसी को लेकर मेरे और अपने बदले
So Jesus is in Capernaum.
और यहाँ पे यीशु मसीह कपरनहूम में हैं.
And he's inside the house.
और वो घर के अंदर हैं.
And Peter is outside.
और पतरस जो है वो बाहर है.
And those that were receiving the tribute money for the temple.
और वो जानते थे कि वो मंदिर के लिए अनुदान वो इकट्ठा कर रहे थे.
They asked Peter, "Well, doesn't your master pay the tribute to the temple?"
और लोग पूछने लगे पतरस को क्या तुम्हारा गुरु वो यानी अनुदान नहीं देते?
And before ever asking Jesus, Peter said, "Well, of course he does. He's a good master."
और हो सकता है पतरस वहाँ पे कहा होगा कि हाँ वो देते हैं क्योंकि वो हमारा गुरु है पक्का ये वो देंगे.
So Peter comes into the house.
और लेकिन यहाँ पे पतरस घर के अंदर आता है.
And Jesus asks him.
और यीशु मसीह उनको पूछे.
What do you think, Peter? The kings of the earth.
और पतरस आप क्या समझते हैं कि जो चुंगी देते हैं और कौन देते हैं?
Do they collect taxes from their own children?
जो राजा होते हैं वो अपने बेटों से क्या चुंगी लेते हैं?
Of course not.
नहीं लेते.
If I was a king,
अगर मैं राजा हूँ,
and I'm the king over a large country,
और मैं एक बड़ा सा देश का राजा हूँ,
and I collect taxes from everybody,
मैं सबों से मैं चुंगी अदा कर रहा हूँ.
I have my kids here.
यहाँ पे मेरे बच्चे हैं.
Everything I have, they're going to have.
और मेरे पास जो है वो उन्हीं का ही तो है.
It would be silly for me to try and collect taxes from them.
और ये अच्छा नहीं लगेगा कि मैं उनसे भी चुंगी लूंगा.
It's a silly thought.
ये मूर्खता है.
And Jesus is saying he has no need to pay anything to the temple. It's his temple.
इसका मतलब यीशु मसीह कह रहे थे कि उसे चुंगी देना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये उसी का ही मंदिर है.
He has no need to make a sacrifice because he's God.
वो परमेश्वर है इसलिए उसे कोई बलिदान की नहीं आवश्यकता थी.
And he says to Peter, just so we make sure not to offend anybody.
लेकिन वो कह रहे हैं पत्र से पत्र ताकि लोग हमको कुछ ना कहे इसलिए क्या करो?
You go to the lake and to the sea and you cast in a hook and that first fish you pull up, you'll get a coin. That's enough for me and for you.
तुम जाओ झील में मछली वहाँ पे मछली पकड़ो जो पहला मछली आएगा उसके भीतर से एक सिक्का आएगा उसको आप दोगे.
To my knowledge, that's the closest Jesus comes to ever making a sacrifice or paying anything to the temple. That's the closest Jesus comes to ever.
और मेरे हिसाब से ये यीशु मसीह अभी निकट आएगा क्योंकि उसके बारे में वो बलिदान के बारे में जो कह रहे थे यहाँ पे.
Why?
क्यों?
Because he had something better to offer.
क्योंकि उनके पास कुछ अच्छा था, बेहतर था देने के लिए.
He knows that the father has no pleasure in the sacrifice of bulls and goats.
क्योंकि वो जानते हैं, यहाँ पे लिखा जाता है कि पिता जो है वो बलिदान में संतुष्ट नहीं है.
The father doesn't need your money.
और पिता आपका पैसा नहीं चाहते.
We give out of love in the heart.
हमारे दिल में उनके लिए खाली प्यार जो रहना है.
But he can do what he wants. He's the God of the universe.
परंतु वो ये सारा विश्व का राजा है और वो जो चाहते हैं वो कर सकते हैं.
There's the story of a Christian lady who was in World War II.
द्वितीय विश्व युद्ध में एक ऐसा औरत थी, उसके बारे में कैसा कहानी है.
And she was in a camp and she and her sister were very poorly treated.
और वो एक कैंप में थे और उसका बहन और उनको बहुत सताया जाता था.
And they were close to death.
और वो लोग मौत के कगार पे थे.
And her sister said to her, Corey, we should do something for these people when this is over.
और वो कह रही थी कि अपने वो बहन से वो कहे कि कुछ हमें ये लोगों के लिए कुछ करना है.
And Corey said, you're right, we should help them in their suffering.
और ये और एक सिस्टर बोली कि हाँ सही है, लेकिन हमको इनके लिए कुछ करना है, उनकी सेवा करेंगे.
And her sister said, you misunderstand me.
और उसका बहन कह रही थी तू मुझे गलत समझी.
We need to do something for those that are doing the persecution.
वो कह रहा कि हमें जो ताड़ना दे रहे हैं उनके लिए हमें कुछ करना है.
Because when this war is over, they're going to feel guilty for what they've done.
और जब ये युद्ध खत्म हो जाएगा वो अपने आप को दोषी मानेंगे, वो लोग जो किए उसी के लिए.
And we need to set up a place where the gospel will be reached out to them.
इसीलिए हमको एक ऐसा जगह तैयार करना है जहां से उनको सुसमाचार जाएगा, वो लोग सुनेंगे.
And Corey said, we don't have the resources.
और वो और एक बहन कह रहा है जो जिसका नाम कोरी, हमारे पास उतना संपत्ति उतना कुछ पैसा वैसा नहीं है ये सब करने के लिए.
We don't have the money.
हमके पास हमारे पास पैसा नहीं है.
Everything we did have, they've taken away from us.
और हमारे पास जितना था सब कुछ तो वो लोग ले लिए हैं.
And her sister said,
और उसका बहन कहे,
Corey, we serve a God who owns the cattle on a thousand hills.
और उसके बहन कहे कि हम ऐसा एक परमेश्वर का है, परमेश्वर का सेवा करते हैं जो हजारों के तादाद में वो जो देते हैं और गायों को बछड़ों को उनको खाना देते हैं.
We'll ask him to sell one. We'll ask him to sell one of the cattle.
और ऐसा एक हम एक गाय को बेचने के लिए और खरीदने के लिए हम बोलेंगे.
Corey's sister died in that camp.
और वो तंबू में उसका बहन, वो कोरी का बहन वहाँ पे मर जाती है.
But when the war was over and Corey was released.
और लेकिन जब वो युद्ध खत्म हो जाता है और वो कोरी को वहाँ से वो छुटकारा मिलता है.
She did through faith exactly what her sister said they should do.
लेकिन उसका बहन जो मरने वाली बहन जो कही थी विश्वास के साथ कोरी वही चीज को की.
It is about faith in God.
और ये क्या है, ये परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने का विषय है.
He doesn't need what you have to heal you.
और आपको चंगाई देने के लिए आपके पास जो कुछ है उसे आवश्यकता नहीं करता परमेश्वर.
He doesn't need what you have to cause something positive to happen.
और कुछ सक्रिय हो जाए इसीलिए आपके पास जो है उसे वो आवश्यकता नहीं करता.
He doesn't need what you have for anything.
और कुछ भी चीज के लिए वो जो आपके लिए करे तो आपको उसे देना नहीं पड़ेगा.
Because he sent his son for your everything.
क्योंकि आपके सब विषय के लिए वो अपने बेटे को ही भेज दिया.
If there's anybody out there who says, if you give me this money, I'll heal you, I'll do this for you.
अगर कोई कह रहा है इससे बाहर कि तुम मुझे पैसा दे दो, ये दे दो, मैं तुम्हें चंगाई दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा.
You can say to them, you're a false prophet, leave me alone.
आप कह सकते हैं कि तू झूठे भविष्यद्वक्ता है और मुझे अकेला छोड़ दे.
It is never about money.
और यहाँ पे पैसे के बारे में नहीं लिखा जाता.
It is never about what you can bring.
और यहाँ पे लिखा नहीं जाता कि आप यहाँ से यहाँ पे क्या लाओगे.
It is always about what Jesus Christ brings.
ये यीशु मसीह जो किया किए और यीशु मसीह जो लाए उसके बारे में लिखा जाता है.
He has brought himself.
और वो खुद को लाए.
Remember when we were talking about the Septuagint?
और आप याद कीजिए जो Septuagint के बारे में बात कर रहे थे.
And we talked about translation.
और हम वो बात कर रहे जो बदल जाने के बाद में.
When you read this passage, verses 5, 6, and 7.
और जो 5, 6, 7 के बारे में बाद में आप पढ़ेंगे ये आयत सब को.
This is a quote from Psalm 40, verses 6-8.
और ये भजन संहिता 40, 6 से 8 तक का उक्ति है.
I want you each to leave your fingers in Hebrews chapter 10.
और मैं चाहूंगा आप अपने हाथों को इब्रानी के किताब पर रख के
टर्न ओवर टू साम 40
और भजन संहिता 40 को निकाले
एंड आई वांट यू टू कंपेयर द टू
और मैं चाहूंगा दोनों को आप तुलना करें
Read it for yourself, not out loud.
आप जोर से नहीं परंतु आप खुद के लिए पढ़ सकते हैं दोनों को मिला के
Psalm 40 verses 6 through 8.
भजन संहिता 40 6 से 8 और इधर आप 10 से इब्रानी 10 का पढ़ सकते हैं हम जो पढ़ रहे हैं 5 6 7 जो भी लिखा है पढ़ सकते हैं और तुलना कर सकते हैं
नहीं
आप अपने लिए पढ़ सकते हैं तुलना कीजिए क्या लिखा गया है
I'll know you're finished when you look up.
मैं जान पा रहा हूँ कि आप जब मेरे और देख रहे हैं तो मैं जान पा रहा हूँ कि आपका खत्म हो गया पढ़ने का That's why maybe we are not done yet.
Yes. Who has noticed the difference?
और ये तुलना को कौन जान पाया आपके बीच में? कुछ लिखा है? Different.
Yes. Is there one?
कुछ लिखा है?
Yes.
कुछ अंतर है? अरे हाँ या नहीं बोलिए ना भाई लोग बहन लोग आपसे कुछ किसी पार्थक्य लिखा अच्छी कि
You can't see any difference. So, in my English Bible, in Hebrews chapter 10,
और मेरे अंग्रेजी बाइबल में जो इब्रानी 10 में
in verse 5
पांच में लिखा गया है
Keep your, don't look in Hebrews, look in your Bible in Psalm 40.
अभी आपके इब्रानी की तरफ मत देखिए परंतु भजन संहिता ही देखिए
The Bible says, sacrifice and offering thou wouldest not.
और लिखा जाता है बलिदान और क्या लिखा जाता है पढ़िए हिंदी में
But a body thou hast prepared for me.
It is then यही लिखा है ना भजन संहिता 40 में 6 से 6 और कौन लिखा है वही चीज जो लिखा है हाँ सेटा तो लिखा जाए कौन लिखा है सॉरी रो
सेतुमाई क्रिस्टो जगत को आगमन करी कहती बलिदान नैवेद्य न करी बहुत इमंत को शरीर प्रस्तुत करे
हां इन ही सेइंग इन साम देयर इज नो मेंशन अबाउट बॉडी
एग्जैक्टली दैट्स माय पॉइंट
वही चीज
इन हिब्रूज इट सेज You prepared a body for me.
और इब्रानी में लिखा जाता है कि तूने मेरे लिए तैयार किया.
In Psalms it says that you have opened my ears.
और लेकिन वचन संहिता में लिखा जाता है तूने मेरा कान को खोल दिया उन्मुक्त किया है.
You see that now? That's the only difference in the quote.
और यही है जो दोनों में अंतर है.
What? Why is there a difference?
परंतु यहाँ पे जो अंतर वो क्यों है?
You remember what I said about the Hebrew text?
मैं आपको आप याद कीजिए मैं इब्रानी के बारे में जो पहले पिछले सेशन में कहा था
that the Old Testament that we read, both you and I,
और जो पुराना नियम आप और मैं पढ़ रहे हैं
was written by the Jews in a few hundred years after Christ,
और यीशु के बाद कुछ सालों के बाद यहूदी लोग कुछ लिखे
from the existing copies that they had and a translation from the Greek,
और जो उनके पास था उसको अनुवाद करके ये लोग लिखे
and that the writer of Hebrews has quoted from the Septuagint.
और ये इब्रानी का लेखक जो है वो उक्ति को वही सेप्टुएजेंट से लेके गए हैं
There's a beauty in the difference.
और यहाँ पे ये अंतर में ही एक सुंदरता है.
Because they're both true.
क्योंकि ये दोनों ही सत्य हैं.
And it's the Spirit of God teaching us something more.
और परमेश्वर की आत्मा हमें कुछ अधिक यहाँ पे शिक्षा देते हैं.
Remember what we said about Melchizedek.
आप याद कीजिए मलकीसदक के बारे में हम लोग क्या सीखे थे.
There's a whole bunch of information that we don't have.
और बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन उसके बारे में जो हमको नहीं मिला है.
We don't know where he was born.
और वो कहाँ पे जन्म हुआ हमें नहीं पता.
We don't know the name of his parents.
और उसके पिता माता के बारे में नहीं पता.
We don't know when he died.
कब मरे उसके बारे में नहीं पता.
We don't know what he was doing before he met Abraham.
और इब्राहिम से मिलने से पहले वो क्या कर रहे थे वो भी नहीं पता.
We don't know what he was doing after he met Abraham.
और जब अब्राहम से मिला उसके बाद वो क्या किया वो भी नहीं पता.
And God did that because it was the picture he wanted for his son.
और परमेश्वर ने ये ऐसे किया इसीलिए वो ऐसा छवि को लिया जो अपने पुत्र के बारे में कह सके.
In this passage in Hebrews,
और इब्रानी का ये जो शास्त्रांश है,
the writer of Hebrews is telling us that God has prepared a body for Christ.
और इब्रानी का लेखक कहते हैं कि परमेश्वर ने एक शरीर को तैयार किया यीशु मसीह के लिए.
That it has been prepared for him to come and do the Father's will.
और ये शरीर को इसलिए तैयार किया ताकि वो आए और परमेश्वर की इच्छा को प्रभु साधन करे.
That's the whole purpose of his incarnation.
और इसीलिए इंसान रूप धारण करने के लिए ये एक एक ही मात्र उद्देश्य था उसका.
Not to offer sacrifices.
ना कि बलिदान को दे.
Not to heal people, although that's nice.
ना कि उनको चंगाई दे.
It was to save your soul.
ये खाली था आपको उद्धार देने के लिए.
That's his purpose. That's his will.
ये उसका इच्छा.
That's the will of the Father for the Son.
और ये परमेश्वर की इच्छा था पुत्र के लिए.
In Psalm 40, it says something different.
और वचन संहिता 40 में वो यहाँ पे कुछ अलग लिखा जाता है.
It doesn't say he's prepared a body for me.
और यहाँ पे लिखा जाता है कि वो तूने मेरे लिए शरीर को तैयार नहीं किया.
It says he's opened his ear.
वो यहाँ पे लिखा जाता है कि वो कान को मेरे खोल दिया है.
Now that's not talking about what Jesus says to us. About him that having an ear to hear.
ये इसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह आखिरी में जो कह रहे हैं कि जिसका कान है वो सुने ये नहीं है वो.
Turn over to Exodus chapter 21.
और निर्गमन 21 अध्याय को हम निकालें.
And someone read. Well, let's just read verse 6 of Exodus 21.
Please.
Just number 6. The verse 6.
Number 6 only.
Yeah, only. Yeah, 21.
6 को दो. 21 और 6.
In Exodus 21, God is talking about the Hebrews in a certain way.
और निर्गमन में 21 में परमेश्वर इब्रानी लोगों के साथ कुछ बात कर रहे हैं.
You see, not everybody is going to be as successful as other people.
और आप देखते हैं कि सब लोग यानी सक्सेसफुल सफल नहीं होते न हो पाते अपने जीवन में.
Whether it's because of weather or wisdom or health, people are going to go through hard times.
और बहुत लोग कठिन समस्या समय के होते हुए जाते हैं. हो सकता है पैसे के लिए, हो सकता है स्वास्थ्य के लिए, हो सकता है पढ़ाई के लिए, हो सकता है ज्ञान के लिए.
And the Jews were allowed to sell themselves into the service of another Jew.
और यहूदी लोग को यह अनुमति था वो खुद को बेचे ताकि दूसरों की सेवा कर सके. और एक जो यानी धनी है ऐसे यहूदी के सामने.
They would receive payment.
और वो लोग वहां से उससे पगार लेंगे.
And they would be the servant of the other person for 6 years.
और 6 साल तक ये लोग उनका सेवा करेंगे और उनका नौकरी करेंगे.
At the 7th year, it would be the year of Sabbath, and they would be released from that contract.
और सातवां साल जो सावत का साल हो उनको वहां से मुक्ति मिलता है.
Now there were certain times in Israel.
और कुछ ऐसा समय था इज़राइल में.
Where the person who had worked for the other for 6 years.
और जो व्यक्ति और एक दूसरे व्यक्ति के लिए 6 साल तक काम कर लिया था.
Would say, you know, you've been a good master.
और वो कहेगा उदास है कि आप एक अच्छे मालिक हैं.
I've enjoyed being in your house.
मैं आपके घर में जब तक रहा मैं आनंदित रहा, अच्छा रहा मैं.
I've enjoyed working for you.
मैं आपका सेवा करने में मुझे आनंद मिला.
And I know that if I went on my own, I'd probably fail again.
और हो सकता है अगर मैं ये सातवां साल आपके घर से अगर मैं चला जाऊं, हो सकता है मैं फिर विफल हो जाऊं और अच्छा ना रहूं.
So I would like to become your servant permanently.
तो मैं क्या चाहता हूं कि मैं तुम्हारा सेवा करने के लिए हर साल मेरे जीवन तक आजीवन सेवा करने के लिए मैं आप चाहता हूं मैं.
In fact, the term would change from servant to slave.
और यहाँ पे जो शब्द है वो यानी जो सेवक से वो और भी नीचे जाता है जिसको हम दास बोलते हैं, स्लेव बोलते हैं.
And this is a covenant.
और ये एक वाचा है.
That I'm going to work for you as I have been working for you.
और मैं आपके लिए काम करूंगा जैसे मैं पहले आपके लिए काम करते आया हूँ.
And you're going to treat me as you have been treating me.
और आप मुझे वैसा ही ट्रीट करोगे जैसे पहले आप ट्रीट करते थे.
If I fail in my work to you, then you can send me away.
अगर मैं आपका सेवा करने में विफल हुआ तो आप मुझे फिर छोड़ सकते हैं.
But equally, if you fail in being your master, the master to me, I can go away.
अगर यानी मालिक भी अगर उसको अच्छा ट्रीटमेंट में अगर वो नहीं दे पाता तो भी वो जा सकता है.
But this covenant wasn't written down.
लेकिन ये जो वाचा ये लिखा नहीं गया था.
This covenant was made by the master.
और ये जो वाचा है वो मालिक के साथ.
Taking it all, a very pointy piece of metal.
और वो क्या करते हैं? वो एक छोटा सा सुतारी लेके हैं, लेते हैं.
And putting a hole through my ear.
और कान में वो यहाँ पे वो होल करते हैं, छेद करते हैं.
That was to show that I was now his for the rest of my life.
और ये दिखाएगा कि मैं जिसके कान में छेद किया गया, दिखाएगा कि ये आजीवन उसके लिए काम करेगा.
In Psalm 40, that's what the psalmist is saying.
और वचन संहिता 40 में वचनकार यही चीज को वो वहाँ पे कहते हैं कि तूने मेरा कान खोल दिया है.
You have opened my ear.
तूने मेरा कान खोल दिया है.
The proof of this is in Isaiah chapter 42.
और ये इसका प्रमाण जो है यशाया उसका 42 अध्याय में है.
Someone read the first 9 verses.
और एक से लेके 9 आयत तक कोई पढ़ दे. यशाया 42 एक रू 9. और यहाँ पे यशाया किसके बारे में कह रहे हैं? Any guess? बता सकते हैं यशाया यहाँ पे किसके बारे में कह रहे हैं? किसके बारे में?
Very good. He's speaking of Christ.
Yes, Jesus.
He's that's That's who it is. You can see so many of the quotes in the New Testament.
और आप नए नियम में बहुत सारे उक्ति को ऐसे देख पाएंगे.
I've said repeatedly, he won't break the bruised reed and smoke and quench the smoking flax.
और यहाँ पे लिखा जाता है वो ना तो कुचले हुए नरकट को तोड़ेगा ना तो टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा.
That's applied to Christ in the Gospels.
और ये सुसमाचार में यीशु पर ही वो जाता है.
It's a quote from Isaiah right there. You just read it.
और ये यशाया से लिया गया. आप अभी पढ़े उसे.
But see, certainly in English and in most languages.
और कई सारे भाषाओं में, खास करके अंग्रेजी में.
For very good reason.
और अच्छे कारण के लिए.
We don't like the word slave.
हमें ये जो दास शब्द ये अच्छा नहीं लगता.
It has a lot of negative connotations, a lot of negative baggage with it.
और जब ये अवॉर्ड लिया जाता है नकारात्मक चीज हमारे मन में आता है.
Because man is very mean and unawful to other men.
क्योंकि जो इंसान है और दूसरे इंसान के लिए ऐसे दिखना तो अच्छा नहीं लगता.
But from Isaiah chapter 40 to the end of the book.
और लेकिन यशाया 40 से उसे पहले से लेके आखिरी तक.
There is an individual spoken of.
एक व्यक्ति के बारे में कहा गया है.
And he's called the servant of the Lord.
और वहाँ पे कहा गया कि परमेश्वर के दास.
That word in Hebrew does not mean servant.
और ये इब्रानी भाषा में ये शब्द का अर्थ servant नहीं, दास नहीं.
It means slave.
इसका means slave का और हिंदी और क्या होगा? Slave का वही दास होगा.
See, there's a difference between a servant and a slave.
और जो सेवक और दास के बीच में अंतर है.
A servant is there and they're working for pay.
और ये सेवक जो है वो काम करता है और वो पैसा ले रहा है.
And I do what the master says because I'm going to receive something in return.
और मालिक मुझे जो कह रहे हैं वो मैं कर रहा हूँ उसके बदले कुछ मिलेगा मुझे.
A slave is different.
लेकिन जो दास है वो अलग है.
He does whatever the master says because he's the master.
और क्योंकि वो करना है जो मालिक कहेगा क्योंकि वो मालिक है.
Turn over to Isaiah chapter 50.
और यशाया 50 को हम निकालेंगे.
And read verses 4 and 5.
और 4 और 5 आयत को देखेंगे.
मुझे परिक्लांत लोगों को बाकियों द्वारा सुस्ती न करी परी भी एथी पाई प्रभु सदा प्रभु मते सिखित लोगों मानों को जीवा दे अच्छा से प्रति प्रभात जागृत करंती शिक्षित लोक परि सुनिबा पाई से मोहर कर्ण को जागृत करंती प्रभु सदा प्रभु मोहर कर्ण फिटाई अछंती पुणि मु विरुद्धाचारी होई नाही के बा पछकु फेरी नाही.
God has given him the ability to speak.
और परमेश्वर वहां पे उनको बोलने के लिए क्षमता दी.
So that he can speak a word in season to the weary.
और ताकि वो जैसे वो थके हुए लोगों को अपना वचन के द्वारा संभालने पाए.
And what does he say in verse 5?
और 5 आयत में वो क्या कहते हैं?
The Lord God has opened my ear.
प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है.
And I was not rebellious, neither did I turn away.
और मैंने विरोध ना किया ना पीछे हटा.
The writer of Hebrews is bringing all of that to bear on Jesus Christ in chapter 10.
और इब्रानियों का लेखक 10 अध्याय में ये सारी चीजों को उक्ति को वहां पे लेके लिखते हैं.
A body you have prepared for me.
एक शरीर आपने मेरे लिए तैयार की.
You've bored the ear.
और आप मेरे कानों को खोल दिए.
I am your slave.
मैं आपके दास हूँ.
I knew you didn't have any pleasure in the sacrifice of bulls and goats.
और मैं जानता हूँ कि बकरों और बछड़ों के बलिदान के द्वारा आपको कोई संतोष नहीं मिलेगा.
So what does he say in verse 7?
और इसलिए 7 आयत में क्या कह रहे हैं?
I come to do your will.
वो कह रहे हैं कि मैं इसीलिए आया हूँ ताकि आपकी इच्छा को पूरा करूँ.
He came to do the Father's will.
वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए आया.
What is the Father's will?
और पिता का इच्छा क्या था?
The salvation of souls.
और आत्माओं का उद्धार.
You remember the prayer of Christ in Gethsemane?
आप याद कर पाएंगे कि गेतसेमने बगीचे में यीशु मसीह का प्रार्थना.
As a man he cries out and says, Father, if it's possible, let this cup pass from me.
और इंसान होने के नाते वो प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अगर हो सकता है ये प्याला मुझसे दूर कर दे.
If there is any other way to save our people other than this, bring it about.
और अगर इसको छोड़कर और कुछ भी है जो आप अपने लोगों को उद्धार दे सकते हैं तो ये प्याला मुझसे दूर कर दे।
As a man, I don't want to die.
और इंसान होने के नाते मुझे मैं मरने के लिए नहीं चाहता हूँ।
But I am your slave.
परंतु मैं तुम्हारे दास हूँ।
You prepared me a body not to come to do my own will.
और आपने शरीर तैयार की मेरे लिए ताकि आके मैं मेरे इच्छा ना करूँ।
But you prepared me a body to come and do your will.
परंतु आपने मेरे लिए शरीर को तैयार की ताकि मैं आके आपकी इच्छा को पूरा करूँ।
So Jesus says, not my will, but yours be done.
और इसीलिए यीशु ने कहा कि मेरा इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो।
The Father's will was for the Son to go to the cross to save His people.
और पिता का इच्छा ये हुआ कि पुत्र जैसे क्रूस पर जाए और उनके द्वारा आपको और मुझे बचाए जाए।
And so when he prays again, there is no, if it's possible, let this cup pass from me.
और इसीलिए वो जब दूसरी बार प्रार्थना किया वो ऐसा नहीं कहा कि प्रभु अगर तेरा इच्छा हो तो इसे दूर कर दे।
He just says, Lord, your will.
लेकिन वो कहा कि प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो।
You can look through the Gospels and you will find over and over and over Jesus has come to do the Father's will.
आप सुसमाचार को पूरी तरह देख सकते हैं और कई जगहों पे ऐसे हुआ है वो यीशु मसीह से खुद कहा कि प्रभु मैं तुम्हारे इच्छा को पूरी करने आया हूँ।
The Father's will was to save your soul.
और पिता का इच्छा है ताकि आपकी आत्माओं के उद्धार।
He did it through the sacrifice of his son.
और ये उसने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा किया।
And the application of that salvation through the Spirit.
और पवित्र आत्मा जो उसके द्वारा उसके बलिदान में जैसे काम करे उसी के द्वारा।
That's why we baptize in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit.
इसीलिए हम जब बपतिस्मा लेते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं।
Because there in the garden Jesus is doing the Father's will.
और ये बगीचे में उस दिन पिता का इच्छा को यीशु मसीह पूरा कर रहा था।
Because when Jesus sends the Comforter, the Spirit is doing His will.
और जहाँ पे यीशु मसीह कहा कि एक कंफर्टर आएगा और यहाँ पे पुत्र आत्मा के वो इच्छा को पूरा कर रहे थे।
Your salvation is because of the Triune God.
और आपका जो उद्धार वो त्रिएक परमेश्वर के लिए ही हुआ है।
This is not passive obedience, but active obedience.
और ये जो है ये बाध्यता है वो लोग उसको obedient हुए और किए हैं।
He's not being rolled over. He's saying, no, this is what I want.
और वो इसीलिए इधर उधर नहीं हुए परंतु वो कहे कि ये मुझे चाहिए।
I have come to do your will.
और कह रहे हैं कि मैं इसीलिए आया हूँ ताकि आपकी इच्छा को पूरा करूँ।
And think about that statement.
और ये उक्ति के बारे में थोड़ा सोचे।
The volume of the book it is written in of me.
और लिखा जाता है ये सारे जगहों पे ये मेरे बारे में लिखा जाता है बोल के लिखा जाता है।
In John chapter 5.
यूहन्ना 5.
He says to the Jews that Moses wrote of me.
वो यहूदियों को कहते हैं मूसा ने मेरे बारे में लिखा है।
He is Shiloh. Shiloh? So, okay. Sorry, it's a reference I knew, but actually, yeah. So in go back to Genesis.
और उत्पत्ति को जाएंगे.
And look at chapter, I believe, 49.
49, 49.
Look at verse 10 of Genesis 49.
और उसका 10 आयत को हम देखेंगे।
The scepter shall not depart from Judah.
लिखा जाता है क्या लिखा जाता है?
Nor a lawgiver from between his feet.
जब तक शीलो ना आए तब तक यहूदा का राजन ना छूटेगा।
Until Shiloh come.
ना उसके वन से व्यवस्था देने वाला अलग होगा जब तक कि शीलो ना आए।
And unto him shall the gathering of the people be.
और वहाँ पे लिखा जाता है कि अपने अपने राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे।
That's Jesus Christ.
ये यीशु मसीह के बारे में ही लिखा गया था।
He is our Shiloh.
वो हमारा वो शांति है।
Foretold all the way back by Jacob.
वो पहले से याकूब के द्वारा कहा गए थे।
He says to Judah, there's going to be a king from your loins all the way through.
और वो कह रहे हैं कि यहूदा तेरे से तेरे वंश से एक राजा उत्पन्न होंगे।
Until Messiah comes.
जब तक मसीहा नहीं आ जाते।
And when he comes.
और जब वो आएंगे।
All the people will be gathered in.
और सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे।
That's who it is.
वो है।
That's why he says in the volume of the book it is written of me.
इसीलिए लिखा जाता है कि सारे किताबों में मेरे बारे में लिखा जाता है।
You remember the two disciples on the Emmaus road?
आप याद कर पा रहे हैं कि इमाऊस के रास्ते पे दो जो शिष्य जा रहे थे?
How wonderful it would have been to hear the sermon that Jesus preached to them.
और कैसा अच्छा हो वहाँ पे हुआ है जहाँ पे यीशु मसीह खुद उपदेश दे रहे हैं उन दोनों को।
Where he starts in Moses with the Pentateuch.
और ये पेंटाटूक से मूसा के बारे में वो शुरुआत करके
and he goes throughout the law and the prophets showing them who he is
और व्यवस्था और नबियों के द्वारा तक जाके वो बता रहा है कि वो कौन है
see god had been saying it from the time of adam and eve
और परमेश्वर आदम ईव के जमाने से वो उसके बारे में कह रहे हैं
I don't desire sacrifice
कि मुझे बलिदान नहीं चाहिए
I desire my sacrifice
लेकिन मैं खुद को बलिदान और ये मुझे चाहिए
Your sacrifices are never going to pay for your sin
और आपका जो बलिदान आप चढ़ाते हैं ये आपके पापों की क्षमा के लिए काफी नहीं है
Only my sacrifice will pay for your sin
और ये मेरा जो बलिदान होगा तब वो काफी है
That's why the law was a schoolmaster it was a teacher
इसीलिए जो व्यवस्था है वो एक स्कूल शिक्षक ही है
Teaching us that we were sinners
और सिखाता था कि हम पापी हैं
And giving us the language of our Savior
और अब हमारे उद्धारकर्ता पहुंचने के लिए उनके भाषा में वो दे रहा था हमको
So that we'd understand him being our high priest
ताकि हम जान सके कि हमारे पास एक प्रधान महायाजक है
And our prophet
हमारा नबी है
And our king
हमारा राजा है
And our apostle
हमारा प्रेरित है
And Shiloh
And हमारा शीलोह है
And the word
और हमारा वचन है
He is our all in all
वो हमारा सब में सब है
And that was the plan from the beginning
और यही शुरुआत से यही योजना था परमेश्वर का
He came to do the will of the Father
और वो इसलिए आया ताकि पिता की इच्छा को पूरा करे
Amen
Amen